प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। आज के हमारे इस अंक में कौन से श्रोता हैं जिनसे हम आज बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता आप सबको लगातार बनी रहती है ना श्रोताओं? तो चलिए, आपकी जो है ये प्रतीक्षा को जल्दी से ख़त्म करते हैं और हम बताते हैं कि आज हमारे श्रोता कौन है। हमारे आज के जो श्रोता है वो है भगत राम पटेल जी। जी हाँ, भगत राम पटेल जी एक जाना माना नाम है हमारे श्रोताओं के बीच। बहुत से श्रोता समझ गए होंगे कि हम किस भगत राम पटेल जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत राम पटेल जो कि रहते हैं श्रृंगारबाड़ी घुटकू में। तो ज़्यादा परिचय हम उन्हीं से जानेंगे और सीधे लिए चलते हैं बाप को हमारे आज के सप्ताह के श्रोता भगत राम पटेल जी के पास। तो स्वागत है भगत राम पटेल जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
जी, मेरे तरफ से भी आपकी अर्पा के जो श्रोता बंधु हैं और आकाशवाणी है, भगत राम पटेल की ओर से जय जोहार, राम राम, नमस्कार जाता है।
राम राम मितान। तो भगत राम पटेल जी, हमारे जो श्रोता आपके बारे में जानते हैं वो तो आपके बारे में जान ही रहे हैं, लेकिन जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे।
जी, मेरा नाम भगत राम पटेल है और पिता का नाम है स्वर्गीय राम स्वरूप जी पटेल, माता जी का नाम है स्वर्गीय धनमत भाई पटेल, और मेरा जो छोटा सा ग्राम है घुटकू, जिसके पारा है श्रृंगारबाड़ी। कहा भी जाता है कि श्रृंगारों का श्रृंगार करने वाली ऐसी जगह जो बाड़ी से और बढ़िया हरा भरा जगह से ढका हुआ जो मेरा स्थान है, बहुत ही अच्छे स्थान, अर्पा के किनारे श्रृंगारबाड़ी जो मेरा पारा है वहीं पर मैं रहता हूँ। और मेरे जो आसपास के दोस्त है जो अपने अर्पक के जो श्रोता बने हुए हैं वे बढ़िया बैठ करके हम सुनते हैं, ऐसी जो जगह है जिसका नाम श्रृंगारबाड़ी घुटकू है।
वाह, आपने इतना अच्छा वर्णन किया है भगत राम जी श्रृंगारबाड़ी का, तो हम मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं तुरंत आ जाऊं वहीं और आपसे तुरंत बातचीत करते हुए वहीं रिकॉर्डिंग करें, ऐसा लग रहा है।
आप लोग का तो स्वागत है।
जी बिल्कुल, आएंगे कभी भी, समय निकाल के हम जरूर आएंगे। तो अपने परिवार के बारे में आपने बताया भगत राम जी, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और काम क्या करते हैं आप, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
हाँ, मैं तो वैसे हमारा जो जन्म है एक किसान परिवार में हुआ है और किसानों के बीच रह करके और अन्न का उत्पादन करना और जितने भी हमारे बंधु भाई हैं उनके लिए अन्न परोसना, ये हम लोग का काम शुरू से रहा है। और हमारे पिताजी जो है किसानी से ही जुड़े हुए थे। धीरे धीरे हम अपनी पढ़ाई के क्रम को शुरू किए और अपने पढ़ाई के क्रम को अपने 12वीं तक के पास किए, फिर भी काम करने लगा, लेकिन मेरे पिताजी का अचानक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी अधूरी सी रह गई, जिससे पढ़ाई तो पूरी नहीं हो पाई और 12वीं तक का जो मैं पढ़ा हूँ। और अभी जो हम लोग का किसानी का क्रम है वो चलता रहा। धीरे 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 करके हमने सामाजिक ठान करने के लिए सामाजिक के रूप में हम सामने आए और अपने बीच में आस पास में रह करके जितने भी बंधु भाई हैं उनको दिशा प्रदान करना कि हमको अगर स्वच्छता में रहना है तो हमको आसपास को कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे स्वच्छ खाना पीना करना है, कैसे अपने छोटे बड़ों का ध्यान करना है, इस पर हमने फोकस किया और सामाजिक सहयोग के रूप में हम सामने आए। उसके बाद फिर धीरे 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 हम रामचरितमानस से जुड़े, क्योंकि हम जानते थे कि हम जो करेंगे वही सामने वाले सुनेंगे और करेंगे। तो हमने एक शिक्षाप्रद बात को अपने आप में ढालने के लिए हमने रामचरितमानस का जो सहारा लिया और गायन वादन और प्रवचन के माध्यम से अपना भी समय जो है बढ़िया ज्ञान वर्धक लगे जुड़े रहे और आसपास के श्रोताओं भी को ज्ञान अपने बांटते रहे।
वाह, तो जैसा कि आपने बताया भगत राम जी कि आप रामचरितमानस से भी जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ उसमें क्या करते हैं, आपकी क्या भूमिका है उसमें?
मैं जब सीखा गीत संगीत जी, तो मैंने भजन कीर्तन करना शुरू किया, उसके बाद प्रवचन रामचरितमानस की प्रवचन करने को शुरू किया, उसके बाद फिर नाल बजाने को चालू किया, उसके बाद साथ में जितना झंकार है उनको बजाना चालू किया, मंजीरा, मतलब जो गायन वादन का क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगे और अपने गायन वादन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वाद्य यंत्रों का मैंने बजाना शुरू किया, लेकिन विशेष जो है मेरे गायकी लाइन जो है और प्रवचन, ये दो ही चीज विशेष है।
वाह, तो भगत राम पटेल जी आपसे हम बातें अभी और भी करेंगे और रामचरितमानस के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल अभी इस समय हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का पहला गीत।
हाँ, मेरी पसंद है एक मेरे घर आई एक नन्ही परी, क्योंकि हमारी जो खुशी है एक नन्ही परी से ही शुरू होता है, तो हम यही गीत सुनना चाहते हैं।
वाह, बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है, तो चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
सप्ताह के श्रोता, सुनने वाले सभी श्रोता जान ही गए हैं कि हमारे आज के श्रोता है भगत राम पटेल जी। श्रृंगार बारी घुटकू से उनसे हो रही है हमारी बातचीत और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं श्रोताओं उनसे, और बहुत सारी जीवन से जुड़े हुए जो सार है और बात है उन्होंने हमें बताया है। तो भगत राम जी, जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और किसानी भी आप करते हैं, तो किसानी में आप क्या क्या करते हैं?
हमारे यहाँ किसानों के बीच में सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग हैं मरार समाज से पटेल
जी।
और हमारा मुख्य धंधा है सब्जी का उत्पादन करना। तो जैसे हम अपने बाड़ी में सब्जी उत्पादन, पहले हमारे आसपास करेला भिंडी ये बहुत ज्यादातर संख्या में उगाया जाता था, लेकिन करेले में जो वायरस की समस्या है वो इतना बढ़ गया कि उसमें उत्पादन नहीं हो पाता, तो अपन सीधा भिंडी लगाए। अच्छा। भिंडी भी धीरे धीरे कम करने के बाद हम लोग का रुझान जो हुआ वो आगे बढ़ करके बरबट्टी है, भांटा है, मिर्च है, इसमें हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बटर का काम किए, धीरे धीरे करके समय परिवर्तन हुआ और बंदरों का और जो जानवरों का, ये जैसे ही फल फूल लगता है तो ये बहुत सारा परेशान करता है, तो हमने अपनी खेती की रुझान को अभी फिलहाल मूंगफली तरफ के ले आए ताकि हमको मूंगफली के ऊपर अच्छी खेती करें और साथ में धान की खेती, दोनों की खेती करते हैं। और मूंगफली की खेती में अपन जब करते हैं तो उसमें जानवरों का ज्यादा आतंक नहीं रहता, बंदरों का ज्यादा आतंक नहीं रहता, तो उसमें जो है हमको लाभ ज्यादा दिखने लगा। हम तो चाहते हैं कि हम हरी भरी साग भाज लगाए, और जैसे हमारा नाम है सिंगार बाड़ी, तो जितने भी अपने खाने पीने का सब्जी है अच्छा हरा भरा, अपने खुद हम खा के तंदुरुस्त रहें और अपने जितने भी श्रोता है, हमारे बंधु हैं आसपास है, बाजार में ले जाकर के जब हम बेचते हैं तो भी बढ़िया बढ़िया खाए और बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त रहे। तो हमारी विशेष रुझान है हरा भरा सब्जी का उत्पादन।
वाह, बड़ा अच्छा उद्देश्य है। भगत राम भैया, आपने अपने जो क्षेत्र का नाम बताया श्रृंगार बाड़ी घुटकू, ये नाम बड़ा मुझे आकर्षित कर रहा शुरू से ही, तो ये नाम कैसे पड़ा ये थोड़ा सा बताएं हमें।
हमारे आसपास के जो जगह है वहाँ बाड़ी जब सब्जी लगाना उत्पन्न किए जब लोग हमारे पूर्वज लोग, तो धीरे धीरे करके सब्जी का उत्पादन इतना ज्यादा विराट रूप में हुआ, और जो आसपास के क्षेत्र है उसमें बढ़िया मस्त लोग धंधा भी करते थे सब्जी का और बिक्री भी करते थे और खाते भी थे, तो धीरे धीरे स्थान का नाम बोले कि तो बाड़ी का श्रृंगार हो गया, बाड़ी का बड़ा सुंदरता स्थान हो गया, तो पारे का नाम उसका श्रृंगार बाड़ी हुआ। और दूसरा चीज है कि हमारे यहाँ जो देवी है कुल देवी गांव का, वो है सिंगारा दाई।
अच्छा।
जिसके नाम से दोनों को मिला करके एक सिंगारा दाई और दूसरा हो गया बढ़िया बाड़ी का विस्तार, तो दोनों को मिला करके अपना श्रृंगार बाड़ी पारा कर दिए और घुटकू में इसका नाम जो है विख्यात हो गए।
ये श्रृंगारा दाई के बारे में जो भी आपने बताया, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं विस्तार से।
ये श्रृंगारा दाई हमारे यहाँ जो एक महामाया है बहुत बड़ी मंदिर, तो कहा जाता है कि उस महामाया मंदिर का जो माता का तो जो स्वरूप होता है बहुत बड़ा होता है, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमने जो सामने जो देखा कि हमारे जब वहां पर तालाब है एक महामाया मंदिर के पास, तो वहां दो बच्चे जो है डूब गए थे और डूबने के बाद उनको खोजा गया तो सुरक्षित उसको निकाल लिया गया जीवित अवस्था में। अच्छा। और आज वो दोनों बच्चे शादी होकर के चले गए, दोनों गुड़िया थी और शादी होकर के चले गए। तो माया दाई का जो विशेष स्वरूप है उनका एक स्वरूप जो है सिंगारा दाई के रूप में ही हम लोग मानते थे महामाया को सिंगारा दाई के रूप में, और इसीलिए उनका जो पूजा पाठ अपन करते थे तो धीरे धीरे एक नया नाम सिंगारा दाई इस नाम से प्रख्यात हुआ और उस नाम से फिर हमारे गाँव का नाम पड़ा।
तो ये श्रृंगारा दाई जो है उनका जो पूजा है ये किसी दिन विशेष में होता है या हमेशा ही इनका, मतलब जैसे होता है ना नवरात्रि के समय में विशेष तौर पे पूजा होती है, या कि हमेशा ही इनका ये पूजा पाठ चलता रहता है?
नहीं, हम लोग जैसे अगर नवरात्रि में नहीं कर पाते तो हमारा एक विशेष जो होता है भाद्र मास में, साल 3 साल में एक बार।
अच्छा,
हम लोग जितने भी गांव के देवी देवता हैं, जैसे ठाकुर देव होता है, सिंगार अदाई होता है, महामाई का जो स्वरूप और गांव में बना हुआ है, ऐसा करके जो हम लोग का 5-7 ठो देवी देवता का जो गांव के आसपास निवास है, तो उनका पूजा हम लोग 3 साल में विशेष रूप से एक बार करते हैं।
अच्छा
जी,
तो इस बार कब होने वाला है ये पूजा?
इस बार इसी साल हुआ है, अभी भाद्र मास में हम लोग अभी कर चुके हैं। अब जैसे 3 साल फिर होगा तो सभी देवताओं का पूजा एक बार पुनः होगा।
चलिए, तो इस साल का तो मौका निकल गया है, पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि माता जी के दर्शन करें और पूजा का भी लाभ हम लें। तो
बिल्कुल स्वागत है सर
जी, बड़ा अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं भगत राम जी। तो चलिए, अब आप बताएं हमें आपकी पसंद का तीसरा गीत।
तीसरा गाना मैं, एक बहुत पुराना गाना है और मैं आज लता मंगेशकर दीदी को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे ऐसे गुरु बन गए थे कि जिनकी आवाज भले ही एक महिला ग्रुप में थी, लेकिन वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा संगीत का जो प्रारूप है हमें प्रदान किया है। तो एक गीत है 100 साल पहले का, जो शुरुआत है 100 साल पहले वाला गीत जो है, इसका जो संगीत है मेरे को बढ़िया लगा, तो ये गाना सुनना चाहता हूँ।
बोल
है
गुनगुना के बता सकते क्या?
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
सदियों से तुझसे मिलने जिया बेपरहार था, जिया बेपरहार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
सप्ताह के श्रोता में पुनः स्वागत आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी बातचीत हो रही है भगत राम पटेल जी से, श्रृंगारबाड़ी घुटकू के जो है निवासी, और बहुत सारी बातें हम उनसे कर रहे हैं लगातार, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी उनके माध्यम से हमें मिल रही है, और बहुत सारी बातें हम भी और भी बाकी है। तो सीधे अब लिए चलते हैं आपको फिर से भगत राम पटेल जी के पास। तो भगत राम जी, ये शौक तो आपने बता दिया कि भाई रामचरितमानस गान में आप जाते हैं, सेवा करना आपका शौक है, बहुत सारी चीजें आपने बताई। हम ये जानना चाहेंगे कि अरपा रेडियो से या फिर रेडियो से जुड़ाव कैसा हुआ?
ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि मेरी जिंदगी का अहम पहलू मात्र और मात्र एक रेडियो है। जब हम उस समय कार्यक्रम सुनते थे आकाशवाणी रायपुर को, उस समय हमारे बीच हुआ करते थे मिर्जा मसूद साहब और किशन गंगेले जी,
जी जी,
और चौपाल में आता था बिसाहू भाई और बरसाती भाई। इनकी जो आवाज की जो धुन है, आवाज जो है, वो रेडियो के माध्यम से इतना ज्यादा हमको प्रभावित किया कि हम जैसे ही ये आकाशवाणी रायपुर है ऐसा कहा जाता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारी आवाज जो है रेडियो से नहीं बल्कि हमारी दिल से निकल रही है। तो इनसे काफी लगाव हुआ, और हमने पहले ही बताया कि हम बचपन से ही संगीत के शौक रखते थे, तो जैसे भी कोई छत्तीसगढ़ी फिल्मी या फिर भजन कोई भी गीत आता था आकाशवाणी से रायपुर से, रायपुर का सबसे बड़े हम श्रोता थे पहले, तो उनसे लगाव हुआ और वहां का जो गीत का प्रसारण हुआ करता था उनसे हमने काफी सीख ली, और शिक्षा प्रद जानकारी बहुत सारे, जैसे वाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ करता था, घर आंगन का बिंदिया का, इस टाइप का बहुत सारे कार्यक्रम, तो इनसे जो लगाव है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम का जो प्रसारण होता था, हम उनसे काफी जुड़े थे, और धीरे धीरे जो है हमारी आकाशवाणी का जो लगाव है इतना विस्तार हुआ कि हम कार्यक्रम से बहुत अच्छा जुड़ गए, और एक श्रोता के रूप में, एक विशेष श्रोता के रूप में हमने अपना स्थान आकाशवाणी रायपुर से बनाया। फिर चालू हुआ अपना बिलासपुर का, तो बिलासपुर में भी अपना स्थान बनाए, और एक अच्छे श्रोता के रूप में आपके बीच अभी भी हैं, और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और लेते रहेंगे।
बढ़िया। और अरपा रेडियो के बारे में अगर हम बात करें, तो अरपा रेडियो से जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ?
अरपा रेडियो, मैं इसके बारे में सुना करता था, तो मेरे को समझ में आता ही नहीं था कि अरपा रेडियो का प्रसारण किस टाइप का है, क्या है, तो मैंने काफी जानने का प्रयास किया धीरे 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 धीरे, और अब मुझे लगा कि अरपा रेडियो का जो प्रसारण है वो बहुत तारीफे काबिल है। बस मैं यही चाहूंगा कि अरपा रेडियो का प्रसारण में जो सहयोग है हमारे श्रोताओं का, ये विशेष रहता है। अगर श्रोता इसको अच्छा बनाना चाहे तो अपनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छी अच्छी बोल, अच्छी अच्छी सोच, अगर इन पर जुड़ाव रखें, प्रसारण करवाएं, तो मेरे ख्याल से अरपा रेडियो जो है हमारी आसपास के लिए और हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा प्रसारण साबित हुआ है। तो धीरे धीरे करके जो अरपा रेडियो का प्रसारण है वो हमें अब भाने लगा है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही भगत राम जी, कि श्रोताओं का जुड़ाव ही जो है किसी भी रेडियो स्टेशन को आगे बढ़ाता है, और उनके द्वारा समीक्षा दी गई, समीक्षा, शिकायत, सुझाव, ये सारी चीज़ें ही किसी भी केंद्र के लिए सही साबित होती हैं। तो भगत राम जी के माध्यम से जो बात कही गई है श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें सुन रहे होंगे। तो कार्यक्रम भी सुनते रहिए और साथ ही साथ जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तो भगत राम जी, हम आपके जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने बात किया ही, हम अगर आपके परिवार के बारे में और जानना चाहें तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
हाँ, मैं एक अच्छा चीज बताना भूल गया था कि मैं अभी अनमेरिड हूँ। अच्छा। मेरा तो शादी नहीं हुआ है और नहीं होने का बहुत सारे कारण था। अब मैं ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में हो सकता है कि हम सफर ही अभी नहीं लिखा था, तो शादी तो नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन मेरे हम लोग तीन भाई होते हैं और चार बहन होती है और बाकी सब लोग का शादी हो गया था। बढ़िया बुरा पूरा भरा परिवार है और हमारे बीच में जो हमने चाहा है हमारे परिवार के अलावा, तो हमने अपने आसपास के जो बंधु हैं, भाई हैं, आसपास के जो लोग हैं, मित्र समाज हैं, हमने उसे ही परिवार मान करके, घर परिवार तो है अपना और आसपास के जो गांव बस्ती समाज है उनको परिवार मान करके, सभी को परिवार मान करके, जैसे भी हम श्रोताओं को परिवार मानते हैं, तो यही श्रोताओं को, यही गांव बस्ती को, यही परिवार मान करके हमने ये देखा है कि हमारी बहुत बड़ी परिवार है जिस पर से आज हम अच्छी अच्छी चीजों को सुनते हैं और सुनाते हैं और अपनी जिंदगी में इन सभी को उतारने का प्रयास करते हैं।
बहुत अच्छा विचार है आपका भगत राम जी, मैं सुन रहा हूँ लगातार आपसे बात करते हुए, विचार भी बहुत आपका अच्छा है और साथ ही साथ आपका जो जीवन दर्शन जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से वो भी बहुत स्पष्ट है कि समाज के लिए जियो, समाज के लोगों को अपना मानो और उनकी सेवा में लगे रहो, ये जीवन दर्शन समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसी बात पर हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का चौथा गीत।
हाँ, तो मैं ये जानना चाहता जैसे मैंने अपने शब्दों में पिरोया था कि मेरा परिवार के अलावा मेरे आसपास के जो समाज है वो मेरे परिवार है, गांव बस्ती परिवार है, देश दुनिया परिवार है, तो एक मेरे को बढ़िया एक ठिकाना याद आया कि आगे चल करके किसी से ऐसा दुश्मनी मोल ना हो जिससे हमारी मित्रता हमारी परिवार में कोई दरार आए, तो एक गाना मेरे को याद आया, दुश्मन न करे दोस्त ने ये काम किया है। मैं श्रोता को इनसे ये जानवाना चाहता हूँ कि हमारे बीच का संबंध बढ़िया बना रहे।
तो भगत राम जी, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो ये गीत भी क्या आप गुनगुना के बता पाएंगे, हमें अच्छा लगेगा।
जी, गुनगुनाते हो कि मेरा गीत ही शौक है और मैं तो चाहता हूँ कि दोस्तों के बीच में रह करके कोई अच्छे अच्छे भजन भी करूँ ऐसा करके
जी।
तो ये भी गाना मेरे को अच्छा लगता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर पमन हमें इनाम दिया है,
इस मधुर से गीत के बाद ही श्रोताओं समय हो चला है सप्ताह के श्रोता से आप सभी से अनुमति लेने का। तो हमारे आज के सप्ताह के श्रोता भगत राम पटेल जी थे और उनसे बहुत ही अच्छी बात हुई, बहुत सारा जीवन दर्शन उन्होंने हमें दिया है अपने बातचीत के माध्यम से, मीठी मीठी गीत भी हम सुन पाए उनके माध्यम से। तो भगत राम पटेल जी, कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में आप हमें और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो मित्रता और लगाव जो है वो हम जानते हैं कि हम जैसे परोसेंगे वैसे हमको मिलेगा, तो हम फिर हम एक बार समझाना चाहेंगे, हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि हम आपको क्या करना है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो हमको देख करके सामने वाला जो है, चाहे वो मित्र के रूप में हो या श्रोता के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हम जो करते हैं वो अच्छाई जो है उसको आप ग्रहण करके और अच्छे सहयोग करके अपने आप को अच्छा बनाएं, आसपास को अच्छा बनाएं और सुमधुर जो समय है उसको परोस करके जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमको एक अच्छे पहचान के रूप में जाने पहचाने, बस यही मैं सभी श्रोताओं से कामना करूंगा।
बहुत अच्छी बात। तो भगत राम पटेल जी, श्रृंगारबाड़ी घुटकू जी के द्वारा कहे गए इसी बात के साथ श्रोताओं, अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता से और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
नमस्कार।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।